ஸ்ருதி சித்ஸ்வாய பாவாயே ஸர்வ பாவம் தரச்சிதே ப்ரவதே நிஜ அனுபவோக்கரே சதா சேதம் யோகம் சவ்யாதா லக்கிகே நமோ சமய சார ஸவ போ அனந்த தர்மநாஸ்தத்வம் பஷ்யந்தி ப்ரத்யகாத்மனா அநேகாந்தமயி மூர்த்தி நித்யமேவ ப்ரகாசிதம். இஸ் சமய சாரி பரமாவம் கிரந்தே பகவத் குந்த் குந்தாச்சாரி தேவ் துவாரா ரச்சித் இஸ்மே கர்த்தா கர்ம அதிகார் கி 144 நம்பர் கி காதா லேனா சாஹ ரஹே ஹே. 144 நம்பர் கி காதா மே ஜோ விஷய ஆனே வாலா ஹே, பஹலி தோ இன்ஹோனே 143 நம்பர் கி காதா மே வாஸ்தவ மே ஆத்மா கா ஜோ ஸ்வரூப் ஹே வோ பக்ஷாதி க்ராந்த ஹே. அனுபூதி மே ஆத்மா வோஹி ஆதா ஹே ஜோ பக்ஷாதி க்ராந்த ஹோ ஜாதா ஹே. தோ யஹா பர் ஜோ 144 நம்பர் காதா லீ உஸ்மே யஹீ கஹா கி அப் நய பக்ஷாதி க்ராந்த சுத்த ஜீவ கா ஸ்வரூப் க்யா ஹே ஐசா பூச்சனே பர் விசேஷ கேத்தி நீ 44 நம்பர் மே அப் யஹ கேத்தி ஹே கி நியம் சே யஹ சித்த ஹே கி பக்ஷாதி க்ராந்த ஹீ சமயசார் மே யஹ சித்தி கர்னி இஸ்மே பலே பஹலே உஸ்கே லியே விகல்பாத்மக தசா கேசி சல்தி ஹே வோ பி வர்ணன் இஸ்மே ஹே டீகா மே ஔர் அந்ததா ஜோ ஆத்மா கி அனுபூதி ஹோதி ஹே வோ பக்ஷாதி க்ராந்த ஹோதி. பக்ஷ கிஸ்கோ கேத்தி ஹே தோடா விசார் பண்ணே பர் பக்ஷ வாஸ்தவ மே கிசி பி பிரகார் கே விகல்ப ஜோ சல்தே ஹே சாஹே வோ நிச்சய கா விகல்ப ஹோ சாஹே வோ வ்யவஹார் கா விகல்ப ஹோ அரே சாஹே வோ பஞ்ச பரமேஷ்டி கா விகல்ப ஹோ கோய் பி விகல்ப ஏக் சுத்தாத்மா கோ சோட்கர் ஹே ஜோ பி பர் கே விகல்ப சல்தே ஹே நய கே விகல்ப சல்தே ஹே வோ சப் பக்ஷ கஹலாதே. ஔர் உன்கா ஜித்னே பார் பி ஆப்கோ சிந்தன் ஹோதா ஹே வோ சிந்தன் சப் பக்ஷபாத் பூர்ண ஹோ கயா க்யோங்கி அனுபூதி மே வோ சாதக் நீ பன்தா. அனுபூதி கேவல் இத்னா ஹே கி அனுபவ கே சமீப லே ஜாதா ஹே சிந்தன் கராதா ஹே நிர்ணய கராதா ஹே லேகின் நிர்ணய கர்னே கே பாத் யே தோனோ ஹீ பிரகார் கே ஜோ பக்ஷ ஹே சாஹே வோ நய நிச்சயனே கா ஹோ யா வ்யவஹார்னே கா வோ அனுபூதி நீ ஹோனே தேதே. இஸ் லியே சமய சார் கோ பக்ஷாதி க்ராந்த கஹா கயா. தேகோ யஹா லிகா ஹே காதா சம் தன்ஷணாணம் ஏஷோ லஹதித்யவரிவவாதேஷம் சப்ணய பக்ஷரைதோ வணிதோ ஜோஷோ சமயே சாரோ சம்யக் ஔர் சுஜ்ஞான கீ ஜிஸ்ஸே ஏக கோ சங்யா மிலே நய பக்ஷ சகல விஹீன பாசித வோ சமய கா சார ஹே. க்யா கஹ ரஹே ஹே கி சம்ய தர்ஷனாணம் யானி சம்யக் தர்ஷன் ஔர் ஜ்ஞான் ஏஷோ லஹதி யானி யே ஜோ சமய சார ஹே ஜோ நிர்விகல்ப சமய சார ஹே பக்ஷாதி க்ராந்த சமய சார ஹே இஸ்கே தோ நாம் படதே ஹே உசி கோ சமயக் தர்ஷன் கேத்தே ஹே ஔர் இசி கோ சமயக் ஜ்ஞான் கேத்தே ஹே. தோனோ நாம் ஏ பக்ஷாதி க்ராந்த சமய சார கே. க்யோ தோனோ நாம் ஹே கி ஜப் பக்ஷாதி க்ராந்த ஹோதா ஹே தோ ப்ரதீதி பி அப்னே ஸ்வபாவ் கி ஏகாக்ர ஹோகே ப்ரதீதி வர்த்ததி ஹே ஔர் ப்ரதீதி கே சாத் சாத் ஜ்ஞான் பி வர்த்ததா ஹே அனுபூதி வாலா ஜ்ஞான் பி வர்த்ததா ஹே. அனுபூதி பி சல்தி ஹே ஔர் ஜ்ஞான் பி சல்தா ஹே. ப்ரதீதி மே தோ ஏக மே ஏக ஜாயக மாத்ர ஹூ யே ப்ரதீதி சல்தி ஹே பர்யாய் மே. கஹா சல்தி ஹே ப்ரதீதி யே பர்யாய் மே. கார்ய ஜித்னா பி ஹோதா ஹே சாஹே வோ சம்யக் தர்ஷன் கா கார்ய ஹோ சாஹே வோ ஜ்ஞான் கா கார்ய ஹோ பர்யாய் மே ஹீ ஹோதா ஹே. சமஜ்ரஹே நா. ஔர் பர்யாய் மே ஹீ யே ப்ரதீதி வர்ததி ஹே ஔர் பர்யாய் மே ஹீ சம்யக் ஜ்ஞான் வர்ததா ஹே. லேகின் வோ சம்யக் ப்ரதீதி ஔர் சம்யக் ஜ்ஞான் தோனோ கா ஆதார் ஏக சமய சார் ஹே ஏக சுத்தாத்மா ஹே ஜோ பக்ஷாதி க்ராந்த ஹே ஜோ விகல்ப கா விஷய நீ ஹே ஜோ அனுபூதி கா விஷய ஹே. ஏசே அனுபூதி கே விஷய ஸ்வரூப் ஆத்மா கோய் समय सम्यक दर्शन कहा जाता है और उसी का नाम सम्यक ज्ञान कहा है। ये लिखा है सम्य दर्शनम अनागम सम्यक दर्शन ज्ञान ऐसो ऐसो लहरी ऐसा उसको प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन का नाम सम्यक ज्ञान का नाम प्राप्त होता है। अणवरी बवदेशम केवल ऐसी कहना चाहिए व्यपदेश को प्राप्त होता है। यही नाम उसको दिए जाते हैं। किसके लिए? नीचे की पंक्ति में लिखा किसको ये दिए जाते हैं? अणय सब नए पक्ष रही दो जो समस्त नए पक्ष से रहित होता है ऐसा भणिदो माने कहा गया है। क्या कहा गया है? कि ये जो निर्विकल्प आत्मा है निर्विकल्प अनुभूति है निर्विकल्प शुद्धात्मा है वो ही सम्यक दर्शन है और वो ही सम्यक ज्ञान ऐसा भणिदो माने कहा गया है। जो सो समय सारो बस वो समय सार को ये कहा गया है। ये समय सार के दोनों नाम है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। ये कलश अमृत चंद्राचार्य ने ऐसा लिखा कि जो आत्मानुभूति है आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मी काया आत्मा की जो अनुभूति होती है वो शुद्ध नयात्मक होती है। किस रूप होती है? आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मी काया यानी शुद्ध नयात्मक होती है। और आत्मानुभूति का ही दूसरा नाम ज्ञानानुभूति है। क्या लिया? आत्मानुभूति कहो या ज्ञानानुभूति कहो या ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति कहो एक ही बात है। ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति होती तो ज्ञान की पर्याय नहीं समझाया लेकिन जो अनुभूति होती है वो पर्याय में पर्याय की अनुभूति नहीं होती। पर्याय में द्रव्य स्वभाव की एकत्व अनुभूति चलती है। एकत्व माने तन्मय होकर अनुभूति करती है वो पर्याय। वो पर्याय पर्याय को तो भूल जाती है पर्याय के विकल्प टूट जाते हैं पर्याय का पक्षपात मिट जाता है। इसका अर्थ ये निकला कि जिसने खुद का पक्षपात छोड़ दिया है तो वो अनुभव करने के बीच में और किसका पक्षपात रख सकती है। यानी अनुभूति के काल में पर्याय जब स्वयं को भूल जाती है स्वयं का पक्षपात नहीं करती है तो अन्य के पक्षपात का तो प्रश्न ही नहीं। शुद्धात्मा में लगना पक्षपात कहलाता नहीं। क्यों? पक्षपात संकल्प होता है और शुद्धात्मा में लगना उसकी अनुभूति निर्विकल्प होती है इसलिए वहाँ पक्ष नाम पाते ही नहीं है। लिया इन्होंने लिखा कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये एक दो संज्ञाएं जिसको प्राप्त होती हैं वो कौन हैं? वो नए पक्ष से रहित जो समय सार है शुद्धात्मा है अनुभव गोचर जो शुद्धात्मा है उसी के दो नाम है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। दो नाम भी साथ में क्यों रखे? एका तीसरा नाम चरित्र का भी रख देते पर नहीं रखा। और दो क्यों रखे? उसका कारण ज्ञान और श्रद्धान ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऐसे पूरक होते हैं कि जब तक अनुभूति नहीं हुई है तब तक ज्ञान को अनुभूति कराने के लिए भेद ज्ञान करके मुख गौड़ की व्यवस्था कर देता है। सही में ना वो मुख गौड़ की व्यवस्था में पहले इतना ज्ञान तो होता है सभी कल्प दशा में कि निश्चय से मैं अबद्ध हूँ अस्पृश्य हूँ अनन्य हूँ अविशेष हूँ ऐसा भी ज्ञान हो जाता है। और पर्याय में देखा जाए तो अभी बंधन की भी दशा है ये ज्ञान कौन कराएगा? ये ज्ञान तो करेगा प्रमाण ज्ञान जो है उससे ये ज्ञान होगा। पीछे वो ज्ञान ही ये व्यवस्था कर देगा कि जिस तरफ को परिणति अपने कहना चाहिए श्रद्धा की परिणति जहाँ जाके विश्वास करना चाहती है वो ज्ञान उसको सहयोगी होकर के अपने विकल्प तोड़ करके उसके साथ जाकर के प्रतीति भी उसे करा देता है और स्वयं अनुभूति भी कर लेता है। अनुभूति ज्ञान में होती है प्रतीति श्रद्धान में होती है। प्रतीति श्रद्धा गुण की पर्याय है अनुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है। क्या कह रहे? ऐसा पंचाध्यायी कार ने पंचाध्यायी में लिखा है कि जो अनुभूति है वो ज्ञान गुण की पर्याय है और जो श्रद्धा है सच पूछो वो सम्यक दर्शन की तो पर्याय है लेकिन सम्यक दर्शन का लक्षण ज्ञान के द्वारा घटित होता है और ज्ञान का लक्षण भी ज्ञान के द्वारा घटित होता है और चारित्र का लक्षण भी ज्ञान के द्वारा घटित होता है। एक ज्ञान का नाम मुक्ति मार्ग है ऐसा लिखा है। देखो कैसा पुण्य पाप अधिकार आया उस पुण्य पाप अधिकार में ऐसा लिखा सम्यक दर्शन की परिभाषा ऐसी लिखी कि श्रद्धान रूप ज्ञानस्य भवनम सम्यक दर्शनम। क्या कहा? श्रद्धान रूप ज्ञानस्य भवनम, श्रद्धान रूप ज्ञान के भवन का नाम सम्यक दर्शन, ज्ञान रूपस्य ज्ञान भवनम वो सम्यक ज्ञानम, और लीनता रूप जिसको चारित्र रूप ज्ञानस्य भवनम चारित्रम। तो तीनों किसके भवन है? सम्यक दर्शन भी ज्ञान का भवन है, सम्यक ज्ञान भी ज्ञान का भवन है, और सम्यक चारित्र भी ज्ञान का भवन है। तो आगे लिखा, इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान मेव मोक्ष मार्ग। क्या कहा? ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि ज्ञान में ही सम्यक दर्शन है, ज्ञान में ही सम्यक ज्ञान है, और ज्ञान में ही सम्यक चारित्र है। फिर अंतर क्या रहा जब ज्ञान मात्र में ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है? तो सम्यक दर्शन का स्वरूप ज्ञान का स्वरूप और चारित्र के स्वरूप में अंतर क्या रहा? अंतर ये है कि ज्ञान जब श्रद्धानुरूप परिणमन होता है तो श्रद्धानुरूप परिणमन में ज्ञान का ही परिणमन चल रहा है। ज्ञान का स्वभाव का कहना चाहिए, ज्ञान का स्वभाव उसमें परिणमन करने वाला है, और ज्ञान में स्व पढ़ के ज्ञान में भी ज्ञान का ही स्वभाव परिणमन करने वाला है, और लीनता रूप जो चारित्र में भी ज्ञान ही लीन होने वाला है, कोई दूसरा लीन होने वाला। इसलिए ज्ञान मेव देहतम सिर हेतु, मोक्ष का हेतु। इसीलिए अभेद में देखा जाए तो ज्ञान को कहते हैं, और भेद रूप देखा जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को भी इनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, क्योंकि वेद पढ़ गया ना तो व्यवहार हो गया, और अवेद हो गया तो निश्चय हो गया, और अनुभूति अवेद में होती है, वेद में विकल्प होते हैं। यद्यपि वे भेद विकल्प पूर्व दशा में आते हैं और वे व्यवहार से साधक भी कहलाते हैं, पर व्यवहार का अर्थ ही इतना है कि वे जाए और निर्विकल्प दशा आए तो हम उनको साधक कहेंगे व्यवहार से, परमार्थ से तो वे साधक ऐसा। मगर शैली ऐसे ही आचार्य होगी। अभी देखिए जरा शैली शुरू करते हैं, क्या सिद्धि करना चाह रहे हैं हम इसमें कि जो आत्मा है वो पक्षातिक्रांत ही होता है, ऐसे ही शुद्धात्मा है, जो पक्षातिक्रांत न हो वो शुद्धात्मा नहीं हो सकता, ये बताना चाह रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं इसकी टीका को। पहले अर्थ, जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है वह समय सार है, इसी समय सार को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा प्राप्त होती है, मिलती है। नामों के भिन्न होने पर भी वस्तु की भिन्नता नहीं। अभी देखो एक बात बताते हैं, एक जगह ये भी गाथा आई है कि जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मनपरय ज्ञान और केवल ज्ञान है, ये जो सामान्य ज्ञान है अपना, उसका अभिनंदन करने वाली पर्याय है। क्या कहा? विरोध करने वाली पर्याय नहीं है, अभिनंदन करने वाली पर्याय है। तो मति ज्ञान से ज्ञान का अभिनंदन कैसे होता है? ऐसे होता है कि आप जरा मति ज्ञान विशेषण को हटा के देखो क्या बचा, क्या बचा? ज्ञान मात्र बचा ना। श्रुत ज्ञान विशेषण को हटाओ तो क्या बचा? ज्ञान। श्रुत हटा दो तो क्या बचा? ज्ञान। अवधि शब्द विशेषण हटा दो क्या बचा? ज्ञान। मन पर्याय विशेषण हटा दो क्या बचा? ज्ञान। और केवल विशेषण हटा दो क्या बचा? ज्ञान। जो बचा वो ज्ञान 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 ज्ञान, पांचों में से क्या बचा? क्या ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो जो ज्ञान ज्ञान की परंपरा है वो सामान्य ज्ञान की होती है, और विशेष ज्ञान में तो व्यतिरेक होता है। विशेष ज्ञान में व्यतिरेक माने नाम बदलते जाएंगे। कुछ पहले समय में जब इंद्रियाधीन प्रवर्तन चलता था और वहां से मति ज्ञान से उपयोग हटके आत्मा के विषय में चिंतन करने लगा वो मति ज्ञान कहलाएगा, और थोड़ी देर बाद जब विशेष नय के द्वारा अपने स्वरूप का निर्णय चालू होगा तो वो श्रुत ज्ञान कहलाएगा। समझ में आया ना? तो ये आत्मा के विषय में एक ही ज्ञान कार्यकारी होता है मुख्य पने अनुभव करने में, और वो है श्रुत ज्ञान। केवल ज्ञान के तो अनुभव करने वाला प्रॉब्लम है ही नहीं। अवधि ज्ञान अनुभव करने में असमर्थ है, मन पर्याय ज्ञान भी अनुभव आत्मानुभव करने में असमर्थ है, क्योंकि उसका विषय पुद्गल है, और मति ज्ञान तो सामान्य कथन करने वाला है, विशेष में अनुभूति होती है और विशेष होता है श्रुत ज्ञान, और श्रुत ज्ञान में एक और विशेषता है, श्रुत ज्ञान में यह विशेषता है कि वो रूपी के साथ साथ अरूपी को भी विषय बनाता है। क्या कहा? श्रुत ज्ञान रूपी अरूपी दोनों को विषय बना सकता है, मति ज्ञान दोनों को ऐसा विषय नहीं बना सकता है जैसा कि ये अनुभव रूप विषय बनाता है। मति ज्ञान से विकल्पात्मक निर्णय तो होता है आत्मा का, लेकिन अनुभूति नहीं होती। समझ में आया ना? अनुभूति जो प्रकट की है वो श्रुत ज्ञान में प्रकट की, भाव श्रुत ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है, उस अनुभूति को कहते हैं शुद्ध नय। जब उन्होंने ये प्रकरण चलाया, 13वीं गाथा में ये प्रकरण चलाया कि जो भूतार से 9 पदार्थों को जानता है वो सम्यक दृष्टि, ये लिखा। अब आप विचार कीजिए, 9 को जानेगा तो भूतार्थ रहेगा क्या अभूतार्थ हो जाएगा? लिखा तो उन्होंने यही गाथा में, जो भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप और निर्जरा आश्रव बंध और संवर मुक्ति ए ही समकित जानना। अब बताइए कौन सा सम्यक दर्शन हुआ? 9 पदार्थों का ज्ञान व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ। तो निश्चय कैसे आएगा उसमें से कि ये जो 9 के विकल्प हैं, ये 9 के विकल्प छोड़ो, उस 9 में 9 नहीं है, उस 9 के अंदर जो है एक जो ज्ञान स्वभाव है वो विराजमान। तो 9 भेद देखोगे तो व्यवहार हो जाएगा, और 9 भेदों की परंपरा को छोड़कर मुझे तो एक आत्मा की प्राप्ति हो, ऐसा एक कलश अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है, तन मुक्त्वा नव तत्व संतति इमाम आत्माएं एकोस्तु न, मेरे एक आत्मा की प्राप्ति हो। तो जब एक आत्मा की प्राप्ति होती है तो होता है शुद्ध नय का उदय, अनुभूति होती है तो होता है शुद्ध नय का उदय, और जब तक अनुभूति नहीं होती है तब तक चलता है सविकल्प भूतार्थ नय। समझ में ना? इन नय 2 प्रकार के होते हैं शुद्ध नय में भी, एक तो वे जो 9 प्रकार के भेदों को जानकर एक भेद की प्रतीति कराने की तैयारी कर देता है, लेकिन वो तैयारी करता अनुभूति नहीं होती उसमें। अनुभूति वाले नय का नाम शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि अनुभूति ज्ञान में होती है, नय भी ज्ञान का अंश है, इसलिए निर्विकल्प जो ज्ञान होता है वो निर्विकल्प ज्ञान में आत्मा की अनुभूति होती है, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होता है। 19 कलश आए हैं पक्षपात के उदाहरण वाले, एकस्य रक्तो न तथा परस्य चित्ति द्वौ द्वावति इति पक्षपाता, यस तत्व वेदी चित पक्ष पाता तस्यास्ति नित्यम खलु चित्तदेव। वे एक नय कहता है कि आत्मा रक्त है, दूसरा नय कहता है आत्मा रक्त नहीं है, एक नय कहता है आत्मा बद्ध है, दूसरा नय कहता है आत्मा अबद्ध है, ये दोनों पक्षपात हैं, 2 नयों के पक्षपात हैं। जो तत्व का वेदी माने जानकार है, अनुभूति करने वाला है, चित पक्ष पाता वो तो दोनों पक्षपात से रहित होता है, और यश्यास्ति नित्यम खलु चित्ते देवे, जिसको नित्य हमेशा एक चैतन्य आत्मा ही है, नए पक्ष वाली कोई चीज उसमें नहीं है, वो ही वास्तव में तत्ववेत्ता है। क्या लिखा? उन सभी कलशों में तत्ववेत्ता का स्वरूप बताया। तत्ववेत्ता कौन है? कि जो पक्षपात से रहे तो वो तत्ववेत्ता है। जिनके पक्षपात है, अभी एक तो वे पक्षपात वाले विकल्प में, विकल्प दशा में, और पक्षपात में ही अगर वे अपना मान लीजिए शुद्धात्मा की प्रतीति मान लें तो भ्रांति में भी है। सही में है कि नहीं? क्योंकि पक्षपात में भ्रांति है, वस्तु का स्वरूप नहीं है। व्यक्ति के नाम का जिनको पक्षपात होता है वे व्यक्ति के स्वरूप को नहीं जानते, व्यक्ति के स्वरूप को जानने वाले व्यक्ति के नाम की महिमा को पहचानते।
आचार्य ने 11वीं गाथा में कहा,
हाँ,
जीव को अनादि से व्यवहार का पक्षपात है।
हाँ ठीक है, देखो वो जयचंद जी ने कहा भावार्थ में, उन्होंने ये लिखा है, जीव को अनादि से व्यवहार का पक्ष है, और आगम में भी सहचर जानकर इसका बहुत उपदेश किया गया है, परंतु इसका फल संसार है, और शुद्ध नय का फल
पक्ष लिखा कभी आया, हाँ,
शुद्ध नय का पक्ष कभी आया नहीं, पक्ष कभी आया नहीं, पक्ष भी निर्दोष पक्ष होना चाहिए, एकांत पक्ष की बात नहीं कर रहे,
शुद्ध न्याय का पक्ष कभी आया नहीं, माने शुद्ध न्याय के विषयभूत आत्मा को कभी समझा, अभी विकल्पों से भी नहीं समझा है। और समझने के बाद अगर विकल्पों का पक्ष आ गया तो भी गया, अनुभूति नहीं होगी। सही में आया, निश्चयवासी बन जाए भले बन जाए, मगर आत्मानुभूति नहीं होगी। बल्कि 85 काय की अंतिम गाथा की टीका लिखी, 170 नंबर की गाथा की टीका, 170 की है, उसमें ऐसा लिखा, 170 या ये 172 नंबर की गाथा की टीका में ऐसा लिखा कि वास्तव में देखा जाए तो जो मोक्ष का मार्ग है वो मार्ग सम्यक प्रकार से समन्वित मार्ग है। वो सम्यक समन्वय कैसा होता है, जहाँ न व्यवहार की अधिकता है और न जहाँ निश्चय की खेच है, जहाँ दोनों नयों के प्रति संभाव है और उनका पक्ष मिट गया है, वहाँ मोक्ष का मार्ग होता है। यद्यपि साधक अवस्था में दोनों चलते हैं विकल्प रूप में, लेकिन दोनों के चलने में ज्ञानी की उपादेय बुद्धि नहीं है, न निश्चय में उपादेय बुद्धि है न व्यवहार में उपादेय बुद्धि है। उपादेय बुद्धि तो एक ज्ञायक परमात्मा जो त्रिकाली ध्रुव है उसमें उपादेय बुद्धि है, लेकिन इसके पहले ये विकल्प आए बिना रहते नहीं, लेकिन ज्ञानी उन विकल्पों का निषेध किए बिना रहता नहीं और अपने आत्मा की अनुभूति को प्रकट किए बिना रहता नहीं। अब हम टीका पढ़ते हैं जरा अमृतचंद्राचार्य की, देखें अपन। टीका में ऐसा लिखा, वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है। क्या कह रहे हैं, आत्मा की जो अनुभूति है वो किसी भी नए पक्ष का विकल्प वाली नहीं होती। जितने नए पक्ष जिनागम में गिनाए गए हों, नयों की जो चर्चा जिनागम में आती है ये जरूर है, तो वो जिनागम में जितनी नयों की चर्चा है वो वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने वाली तो है, लेकिन वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने के बाद दृष्टि मुख्य नय के द्वारा अथवा निश्चय नय के द्वारा दृष्टि पहले अपना लक्ष्य तय कर लेती है और दूसरे नय को गौण कर देती है, और लक्ष्य तय होने पर लक्ष्य का विकल्प रहता है। क्या कह रहे हैं, लक्ष्य होने पर लक्ष्य का विकल्प रहता है, वहां तक अनुभूति नहीं होती है। वो लक्ष्य का भी विकल्प जो छूट जाए और लक्ष्य में एकाकार उपयोग हो गया, अनुभूति प्रकट हो जाती है। सही में इस अनुभूति की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। टीका में लिख रहे हैं अमृतचंद्राचार्य, वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है। तो रुक गया का अर्थ यही निकला कि व्यापार चल रहा था। क्या कहा भाई, रुक गया का मतलब व्यापार ही ना चला हो तो रुक गया वाली बात आएगी कहां से। तो इसका अर्थ ही है कि तत्व निर्णय में नयों का व्यापार चलता है और इसमें नुकसान तब तक नहीं है कि जब तक वो निर्णय नहीं हुआ है तब तक वो नयों का व्यापार चले तो चले, पर्याय का निर्णय करने को पर्यायार्थिक नय का चले, द्रव्य का निर्णय करने के लिए द्रव्यार्थिक नय का चले, और मालूम ऐसा चलता है वो भी। जिनागम में दो नये कहे, वे दो नये एक है द्रव्यार्थिक नये और एक पर्यायार्थिक नये। 114 गाथा है ना सर, प्रवचन साधी है, उसमें ऐसा लिखा है जब द्रव्यार्थिक नये से आत्मा को देखते हैं तो वो तो नित्य अभेद अखंड अविनाशी ऐसे ही नजर आता है। और हाँ, तो सर्वथा बंद कर दो कि फोड़ दो। तो बंद का अर्थ ये है कि बंद रखना, ऐसा नहीं करना, ढीला बंद होगा तो लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाओगे। हमने 303 बंदूक चलाना सीखी, वो NCC में 3 साल उसकी ट्रेनिंग दी, सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट पास किया। सुन लो जरा, आपको बता दें तो अनुभव हमको है, तो वो जब बंदूक चलाने में क्या होता, जैसे ही ट्रिगर दबाया ये जो 303 इतना जोर का धक्का मारती है कि ढीला पकड़े हो तो कंधा उखड़ जाए, ऐसा ऐसा उसकी चलानी कला। लेकिन ये कहते हैं कि तुम हमें पहले बताओ ये चीज, ये लक्ष्य बनाया हमने, वो एक लाल समझ लिए लाल कपड़ा है उसका लक्ष्य, और 1 किलोमीटर दूर लक्ष्य है वो, और साधो निशाना, फिर मैं प्रश्न करूं उसका जवाब दो, फिर तुम निशाना लगाना। तो उन्होंने, अपन ने निशाना साध लिया, उन्होंने पूछा आपके उस निशाने पर क्या क्या दिख रहा है, वो एक, एक उसमें वो बना रहता है, नोक बनी रहती है, उस नोक को देखते हुए सामने एक किलोमीटर दूर निशाना साधना है, समझाया। और उसने पूछा आपको क्या दिख रहा है, आपने कहा वो लाल वस्त्र भी दिख रहा है और वो डाली भी दिख रही है, लक्ष्य भ्रष्ट होती, क्योंकि लक्ष्य में जितनी चीजें होती हैं लक्ष्य के अलावा वे सब अलक्ष्य कहलाती है, और अलक्ष्य में दृष्टि गई कि लक्ष्य भ्रष्ट हो गए तुम, अब तुम्हें वो प्रैक्टिकल कराने की भी जरूरत नहीं है। तो वो निशाना साध करके लक्ष्य अकेला ख्याल में आना चाहिए, ज्ञायक तुम्हारा लक्ष्य है, कौन है लक्ष्य, ज्ञायक है। अब ज्ञायक जिनका लक्ष्य हो तो बीच में जिनने ज्ञायक की शिक्षा दी है उनका विकल्प नहीं आना चाहिए। हाँ वो तो वो ये लिखा है भाई, जब पर्यायार्थिक नय के नेत्र खोल कर देखते हैं अजन्य और द्रव्यार्थिक नय का नेत्र बंद करके देखते हैं तो पर्याय अनित्य है, ये यथार्थ है, ये वास्तव में है, ये लिखा वहां तो समझ में ना, भूतार्थ है शब्द डाला है पर्याय के लिए भी, क्यों, क्योंकि पर्यायार्थिक नय से पर्याय को देखो तो जो पर्यायार्थिक नय से देखा जाएगा वो पर्याय की अपेक्षा भूतार्थ, परंतु द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर जब द्रव्य स्वभाव को देखा जाता है तो वो पर्याय तो द्रव्य में है ही नहीं, तो वो अभूतार्थ हो गई, समझ में आएगी नहीं, और वो अभूतार्थ हो गई, द्रव्य स्वभाव भूतार्थ है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस द्रव्य स्वभाव को भूतार्थ कहा है उसमें द्रव्य स्वभाव भूतार्थ है, द्रव्य स्वभाव का विकल्प अभूतार्थ, क्या कहा, भूतार्थ द्रव्य स्वभाव तो है लेकिन द्रव्य स्वभाव का विकल्प अभूता, वो विकल्प भी मिटना चाहिए तब आत्मानुभूति होती है। आगे इन्होंने ये लिखा, वास्तव में इस एक को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का नाम प्राप्त है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय सार से अलग नहीं है, वे समय सार मय है, सम्यक दर्शन समय सार ही है, सम्यक ज्ञान समय सार ही है, और तत्वार सार नाम का ग्रंथ है, तत्वार सूत्र की टीका अमृत चंद्राचार्य की, उसमें तो उन्होंने ये लिखा है सम्यक दर्शन, पहले तो ये लिखा कि सम्यक दर्शन जो है तत्व की श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन है, और दूसरी लाइन में लिखा वो आत्म रूप है, क्या शब्द लिखा, आत्म रूप, फिर सम्यक ज्ञान की बात लिखी तो कहे जो स्वपर को यथावत जानता है वो सम्यक ज्ञान है, और वह सम्यक ज्ञान भी आत्म रूप है, और चारित्र पर का आश्रय छोड़ के स्वभाव में मग्न होता है वो चारित्र है, और वह चारित्र भी आत्म रूप है। अभेद से देखो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्म रूप है, और भेद करके देखो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अलग अलग स्वभाव लक्षण वाले हैं, उनका स्वभाव एक का स्वभाव दूसरे से नहीं मिलता, लेकिन मोक्ष मार्ग में तीनों मिलकर एक मार्ग बन जाते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अपन ने ये भी कभी पता नहीं लगाया होगा कि तत्व तो बिना सात और एक वचन का किया है प्रयोग, जीवा जीवा श्रव बंद संवर मोक्ष बंद संवर निजरा मोक्षास तत्वम है, तत्वम और पांच ज्ञान गिनाए और एक वचन का प्रयोग किया, मति सुतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम, जबकि बहुवचन होना था वहाँ और ज्ञानानी होना था, लेकिन यहाँ व्याकरण का लक्षण नहीं सिखा रहे, यहाँ मोक्ष मार्ग को बता रहे हैं, और मोक्ष मार्ग में पांच ज्ञानों में सामान्य ज्ञान एक ही होता है, क्या कहा, वो पांच रूप नहीं होता है, पांच रूप तो तुमने सापेक्ष देखा है तो पांच रूप कहलाते हैं, अगर पांचों नाम लिख दिए जाएं, जरा ख्याल करो बोर्ड के ऊपर पांच नाम लिख दें क्रम से, लेकिन इस तरीके से लिखें, मति और ज्ञान, श्रुत और ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय और ज्ञान, और केवल और ज्ञान, और बीच में एक लाइन खींच दें, देखो जरा क्या बचा, ज्ञान 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 ज्ञान, यही तो सामान्य ज्ञान है, यही तो सामान्य ज्ञान, जब दृष्टि में आ गया और मति आदि दृष्टि से ओझल हो गए, सामान्य ज्ञान की प्रतीति हो गई, निर्विकल्प अनुभूति हो गई, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया और ज्ञान सम्यक बन गया, उस अनुभूति को दो प्रकार के नाम दिए जाएंगे, या तो उसको कहेंगे सम्यक दर्शन, अथवा उसका दूसरा नाम ज्ञान की अपेक्षा दिया जाएगा सम्यक ज्ञान। और उस काल में अगर चारित्र की भी बात की जाए तो जिस समय अनुभूति होती है उस समय ज्ञान और दर्शन दोनों अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं। ये मग्नता का नाम चारित्र है, सही मायने लीनता का नाम चारित्र है। तो वहाँ स्वरूपाचरण चारित्र भी वर्तता है। कहाँ पर? आत्मानुभूति में सम्यक दर्शन तो है ही, प्रतीति तो है ही, ज्ञान भी है और स्वरूपाचरण चारित्र भी। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष, अनुभव है वो मोक्ष का मार्ग। मार्ग है तो तीनों का भेद है, कोई एक ना हो ऐसा नहीं। पर चूंकि यहाँ तो निर्विकल्प आत्मा ही समय सार है, यह निर्विकल्प समय सार ही आत्मानुभूति है ये सिद्ध करना था, इसलिए इन्होंने मूल दो की चर्चा की, श्रद्धान की और ज्ञान की। अब आगे देखो इसमें लिखा, प्रथम तो अब विधि बता रहे हैं, इस अपने आत्मा के अनुभव करने की विधि। प्रथम तो देखो, प्रथम क्या काम करना? श्रुत ज्ञान के अवलंबन से। किसके अवलंबन से? श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके। अब ये समझ में नहीं आई बात कि श्रुत ज्ञान से चालू क्यों किया, मति ज्ञान से चालू करना था। क्या कह रहे? कुछ कारण है, कारण क्या है बता दूं आपको। श्रुत ज्ञान जो होता है वो पांच इंद्रियों के निमित्त, मति ज्ञान जो होता है वो पांच इंद्री के निमित्त से होता है, और मति ज्ञान का जो विशेष भाव भाषण करने में जो समर्थ होता है वो श्रुत ज्ञान होता है। जैसे मैंने कहा ये आपका समझिए कि तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं, मोबाइल है, ये मोबाइल है। तो मोबाइल कहा तो आपने कान से सुना, तो ये कान से जो ज्ञान हुआ है कि मोबाइल है ये मति ज्ञान है, समझ में आया। ये सुना शब्द है वो मति ज्ञान है। अब मति ज्ञान से सुना मोबाइल और फिर सोचा मोबाइल माने क्या, तो ख्याल में आई ऐसी वस्तु, वो श्रुत ज्ञान। क्या कहा? मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष जानने का नाम श्रुत ज्ञान, ये परिभाषा है। तो श्रुत ज्ञान से निर्णय होते हैं, समझ में आएगा कि नहीं। तो यहाँ लिखा है, प्रथम तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय करके। और एक कारण और समझ में आया कि मति ज्ञान अरूपी को विषय नहीं बनाता, अरूपी के विकल्प तो करता है लेकिन अरूपी को विषय अनुभूति नहीं कर सकता। और जो श्रुत ज्ञान है वो विकल्पात्मक भी नयात्मक विकल्प के द्वारा भी निर्णय करता है, और निर्विकल्प होकर अनुभव रूप सच्चा निर्णय भी वो ही करता है ऐसा। इसलिए यहाँ शब्द श्रुत ज्ञान डाला, ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके। फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए प्रयोजन क्या है इस सारी प्रक्रिया का? प्रयोजन ये है कि आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि करना है, आत्मा की बात नहीं करना है, आत्मा को नए से नहीं विचार करना है, और कर भी लिया हो तो अब प्रगट प्रसिद्धि करना है। और प्रगट प्रसिद्धि जब तक विकल्प ना मिटे तब तक होती नहीं। तो देखो लिखा है, प्रगट प्रसिद्धि के लिए अब पहला स्टेप क्या होगा प्रगट प्रसिद्धि के लिए? पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों द्वारा। इंद्रियां किसकी प्रसिद्धि करती हैं? पर पदार्थ की, पर पदार्थ की और विशेषकर उद्गल की। क्या कहा? पांचों इंद्रियां उद्गल की प्रकाशक है, समझ में आया ना, उद्गल की ही प्रसिद्धि करती हैं। इसलिए पर पदार्थ की माने उद्गल की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा। अब मन भी ये डबल काम करता है, जब मति ज्ञान प्रवर्तन करता है पर पदार्थ को ग्रहण करने में तो उसका चिंतन मति ज्ञान कर लेता है, रूपी का भी चिंतन मति ज्ञान करता है, तो वो इंद्रियों को सहयोगी बन जाता है, समझ में आएगी नहीं। तो इन दोनों के द्वारा पर पदार्थ को प्रसिद्ध करने वाली इंद्रियां और पर पदार्थ की प्रसिद्धि वाले मन के विकल्प, इन दोनों प्रकार की बुद्धियों को इन दोनों प्रकार के विकल्प को एक प्रश्न किया था किसी ने, बुद्धि किसको कहते हैं? क्या कहा? ज्ञान और बुद्धि में अंतर है कि एक ही बात है? अंतर है। ज्ञान ज्ञान मात्र है, जानन स्वरूप वाला है। बुद्धि विकल्प सहित ज्ञान का नाम है। किसका नाम? विकल्प सहित जो ज्ञान है वो बुद्धि है। इसलिए मति ज्ञान यानी मति द्वारा जो चीज तुम ग्रहण करने जाओगे वो विकल्प सहित ही ग्रहण करोगे। सही में श्रुत ज्ञान द्वारा भी जो विकल्पात्मक होगा वो विकल्प द्वारा ही विकल्प रूप ग्रहण किया जाएगा, लेकिन आत्मा का अनुभव जो होगा वो विकल्प द्वारा ग्रहण नहीं होगा। वो भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा, निर्विकल्प भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा उसकी अनुभूति होती है। और यूं कहना चाहिए कि जो विकल्प रूप श्रुत ज्ञान है वो भाव रूप अभी हुआ ही नहीं। वास्तव में भाव श्रुत ज्ञान तो कब कहलाए कि विकल्प ही ना रहे और प्योर ज्ञान मात्र रही, ज्ञान की पर्याय रही और ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में तन्मय हुई और उसे जो वेदन में आया, और वो वेदन में बोला था ना तो गूंगे की तरह वेदन में आया है, माने वाणी का विषय नहीं बनाया उसने, अनुभव का ही विषय बनाया। और अनुभव का विषय ऐसा है कि अगर एक बार वो अनुभूति प्रगटे तो समझो तुम्हारे घर में रतन प्रगट हो गया, और रतन प्रगट हो गए तो तुम ये विकल्प मत करना कि औरों को दिखा दे। क्यों? क्योंकि औरों को दिखाने के विकल्प में ही तुम्हारा रतन गायब हो जाए। मत दिखाओ, तुम्हें रतन मिला तुम तो उसका भोग करो, वो निराकुल सुख को देने वाला रतन है और दिखाने के भाव में आकुलता पैदा करता है। क्या कह रहे? और ज्यादा ही बहिर्मुखी हो जाओ तो घमंड पैदा कर देता है। इसलिए जैसे कोई एक कोई आया है ना बतन, अब निज बतन में रहकर निधि को भोगता है। हाँ, जहां भी कोई आया है, कोई को अगर रतन मिले तो अपने बतन में रहकर के वो रतन को बिल्कुल गुप्त रह के भोगता है। ऐसे सम्यक्तवादी की निधि हमारे आचार्यों ने गुप्त रहकर भोगी और भोगी है, अनुभव किया है, हैं? उसकी घोषणा करके कोई जगत की प्रसिद्धि नहीं पाई है, उसकी घोषणा करके कोई से पूजने का विकल्प नहीं किया है, बल्कि ये विकल्प किया है कि हमारी ये रिद्धि, हमारी ये कहना चाहिए सम्यक रत्न, ये लुट ना जाए, ये रत्न बना रहे, इसका उपाय ये किया कि कोई को बताना ही नहीं, तो अपना रत्न सुरक्षित रहेगा और प्रसिद्धि का लोभ या बाहर का लोभ हमें सताएगा नहीं, और हमारे विकल्प भी बाहर के होंगे नहीं, और हम उसका ही बारंबार अनुभव करेंगे और बारंबार आनंद को
इतना भी बताया होता तो हमको मालूम कैसे पड़ता?
क्या कहा?
इतना बताया है, इतना लिखा है।
हाँ,
तभी तो मालूम पड़ रहा है ना अपने।
हाँ, तो मालूम क्या क्या पड़ रहा? जो दिखाया है वो आपको नहीं दिखाना है, ये बताया
है।
क्या दिखाया है? हमने ये दिखाया है, जैसे हम कोई प्राइवेट बात करें ना आपको, तो हम आपसे कहेंगे भैया आपको कान में हम बोल रहे हैं, तो इसलिए कि कोई और ना सुन ले। अब तुम दूसरे के कान में मत बोलना कि कोई दूसरा ना सुन ले, नहीं तो तुमने हमारी बात सुनी ही नहीं। समझ? अब भी वो दूसरे को सुना रहे, धीरे से सुना रहे, कोई दूसरा ना सुन ले इसलिए धीरे सुना रहे, वो तीसरे को सुना रहा, तो हो क्या गया? ये बात तो ओपन हो गई ना। सब दो के बीच में जो चर्चा होती है वो गोपनीय होती है, तीसरे के कान में जाते ही साथ वो ओपनीय हो जाती है, गोपनीय नहीं रहती है। समझ लो आप, ऐसी स्थिति है। मैं आपको सच बातें बता रहा हूँ, समझने की है बात। आगम के प्रमाण अगर चाहिए हो इन बातों के विषय में तो मैं प्रमाण नहीं दे सकूंगा, मगर थोड़ा विचार करना, और विचार करके आत्महित करने के लिए बातें हैं इसमें। आत्महित ही मुख्य है, अन्य कोई चीज मुख्य नहीं है, जगत के वैभव मुख्य नहीं है। अरे इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में ना ही लुभाऊं, रागादिक दोष हरी दे, परमात्म निज पद, यानी निज पद की प्राप्ति की बात है। और व्यवहार से हम कह रहे भगवान आप हमें निज पद दो, व्यवहार में जितना लोग बोलते सब उल्टा बोलते हैं, एक भी शब्द सही नहीं बोलते। आज अर्घ बोला था सब लोगों ने, याद दिला दें कौन सा अर्घ बोला था? हैं? पार्श्वनाथ का अर्घ है, क्या है? हैं, उसमें पार्श्वनाथ के अग्नि के तुम्हारे से वो आता है, उसमें आपका उसमें लिखा है कि भगवान आप हमेशा भूलिए नहीं कदा, बोला है ना, वो शब्द भूल गया मैं, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा। अब जरा देख लो तुम बोल का रहे हो भगवान के सामने, थोड़ा विश्लेषण कर दे जरा, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, आप क्या करो, आप दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। गजब हो गया, एक तो दो काम करो तुम, हमें निवास मोक्ष का निवास दे दो और हमें तुम नहीं भूलना कभी, और हम चाहे भले भूल जाए, क्या हो गया, ये व्यवहार ऐसे ही होता है, उल्टा ही बोला जाता है, अर्थ तो उसमें ये है, ये अर्थ है कि हे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र हैं देव सेव आपकी करूं सदा, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, ये व्यवहार का वचन है, अपनी सेवा के लिए सब कुछ कर रहा हूं, सही माया, एक आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष, माने अब इस सेवा आत्म सेवा से मुझे मोक्ष मिलेगा, लेकिन व्यवहार में हम ये बोला करेंगे कि आपकी कृपा से मोक्ष मिला, सही माया, पर कोई की कृपा से मोक्ष किसी को अनंत काल में न मिला है और न आगे अनंत काल में मिलेगा, इसलिए कृपा के भरोसे आत्म कल्याण किसी का नहीं होता। क्या कह रहे, थोड़ा सुनो ध्यान से, है ना, अब आगे लिखते हैं, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा, और आप भूलो मत। और एक भैया अर्घ तो ऐसा बोलते हैं गजब का, उसमें ये कहते प्रभु अंतर्यामी त्रिभुवन नामी सबई के स्वामी मेरा दोष हरो, जा अरज सुनीजे ढील न कीजे न्याय करीजे प्रभु दया करो, यानी जो प्रभु के पास है नहीं वो तुम सब लाना चाहते हो, न्याय करो जैसे भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, दया करो, अब्बे हो गए बीतरागी, दया छोड़ के बीतरागी बने, और तुम कह रहे दया करो और ढील न कीजे, ढील उनने की है कि तुमने की है, बोलो कैसा कैसा चलता है, मगर देखो वो व्यवहार वचन है इसलिए विरोधी नहीं है, मगर जो व्यवहार के मर्म को नहीं जानते हैं उनको सच्ची बात समझ में नहीं आती, जिनादों में ऐसा ही व्यवहार आया है, और अभी अपन भी बोलते हैं अगर गुरुदेव नहीं होते तो हमें कौन तारता, हमारे सबके तारणहार गुरुदेव हैं, कौन से नए से बोले हो, व्यवहार में भूतार्थ है क्या, भूतार्थ साचा है कि साचा नहीं है, उपचरित है, हमने झूठा नहीं बोला, मुझे मालूम है तुम्हारी आदतें बहुत खराब, हमने झूठा शब्द जानबूझ के नहीं बोला, और तुम भी नहीं बोलना, उपचरित बोलना, सही में है कि नहीं, झूठा है झूठा है ऐसा नहीं, जिनवाणी में झूठी बात होती ही नहीं, व्यवहार भी कथन होता है तो भी वो असत्यार्थ का मतलब ये है कि विद्यमान अर्थ को नहीं बताता, इसलिए असत्यार्थ कहा जाता है, लेकिन उसमें कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, असली अर्थ उसमें नहीं, लेकिन सारी दुनिया का व्यवहार उसी में चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बाजार जाओ और शक्कर लेते आओ और दुकानदार को पैसा दो, लो भाई 10 रुपया, और काय के शक्कर के, क्या कहा, शक्कर के पैसा होती है, वह भाषा ही ऐसी होती है, इसलिए ये व्यवहार की भाषा को समझना, और यहाँ इन्होंने ये लिखा कि प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर, अब देखो यहाँ कुतर्क नहीं करना कि वो बुद्धि का परिणमन तो पर्याय है, वो तो स्वतंत्र है, उसको हम पकड़ के मर्यादा में कैसे लाएं, ये एक कुतर्क नहीं करना, इसलिए ध्यान रखना कि ये मर्यादा में लाने के लिए हमारे लिए विचार करना होगा कि किस तरीके से स्वभाव की जोर बढ़े, ये सब मर्यादा में आ जाएंगे, और स्वभाव के जोर में सारे विकल्प टूट जाएंगे, और स्वभाव के जोर में आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाएगी। तो सारी गाथा में जो बात कही गई है कि अंततः यही बात कही कि भैया नए पक्षपात से मुक्त हो, और नए पक्षपात से मुक्त हो के अपने आप ज्ञायक आत्मा में निर्विकल्प मगन हो, जितने काल को मगन होगे उतने काल को अतीन्द्रिय आनंद आएगा, बाद में विकल्प में आने पर वो अतीन्द्रिय आनंद की याद तो रह जाएगी, लेकिन वैसा ही अनुभव नहीं आ सकता, वैसा अनुभव दोबारा तब आएगा जब फिर निकल निर्विकल्प दशा को प्राप्त करोगे, तब आएगा, और ऐसी निर्विकल्प दशाई का नाम समय सार है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है और उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। इस तरह इस संक्षेप में बात की है। और अगर कोई चीज भूल में आई हो, बोलने में भूल जाए, कहीं चूक गए हो, तो आप सुधार लेना, लेकिन हित करने की भावना से सब सुनना और हित करने की भावना से विचार करना।